निकाम शो करके किया जाए तो आनंद देगा। दो चीजों पे डिपेंड करता है। फिर से आवाज
में दूसरे ढंग से कहा गया बौद्ध दर्शन में बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को कहा गया है कि चार चीजें जानना बहुत आवश्यक है, चार आर्य सत्य है। उसी को अपन सम्यक दर्शन ज्ञान चार को कहते हैं, मैं आपको इस तरह से समझाया, उसी को अपन आश्रवण संपन्न निग्रह मोक्ष ये कहते हैं। और उस भाषा में समझ के ऐसा समझते हैं, दुख है सबसे पहले इसको एक्सेप्ट करना। हम लोग ये स्वीकार नहीं कर पाते कि दुख है। जो व्यक्ति दुख है ये स्वीकार कर लेता है, वो दुख का कारण खोजता है। हम लोग दुख का कारण ही नहीं खोजते, हम लोग दुख को स्वीकार ही नहीं करते। कोई रास्ते मिल जाए तो हम भूल जाएंगे कि हम दुखी हैं, नहीं एकदम कैसा चल रहा है, एकदम बढ़िया चल रहा है, ऐसा जो कि भीतर ही भीतर हमारा जीवन खो रहा है। हम खुद भी अकेले बैठते हैं तो अपनी पीड़ा के बारे में जरा भी नहीं, हम पोस्टपोन करना चाहते हैं, हम वास्तविकता से पलायन कर देते हैं सीधी सीधी। तो सबसे पहले तो स्वीकार करना पड़ेगा, जैसे रोगी हो और रोगी अपने को ना माने तो भाई को डॉक्टर के पास जाएगा, फिर डॉक्टर उपाय बता दे, उसका पहले तो कारण बताएगा, निदान डायग्नोज करें। तो दुख है, दुख का कारण है, अगर दुख का कोई कारण है तो फिर उसका कोई बचने का उपाय भी होगा, दुख से बचने का उपाय ही सुख का कारण है। और अगर दुख से बच जाएंगे तो कोई एक शाश्वत सुख भी होगा, चौथा आय सत्य वो भी है कि सुख है, सुख का उपाय है, यदि दुख से बचने का उपाय है, दुख का कोई ना कोई कारण है और दुख है, ठीक इसी तरह की प्रक्रिया इसमें बनाना। और दूसरी चीज, एक तो इस तरह से सोचा जा सकता, दूसरी चीज हमारे अनादि काल के संस्कार अगर हम गौर से देखें तो एक श्लोक में एक कथा में हमारे गुरुदेव स्वामी ने लिख दिया है, शुद्ध परिचिदानुभूता सब वस्तु की काम को बंद कहा, एक सुगलंबू नवदिन सुल्पो विभक्त, जो एकत्र विभक्त अपने शरीर से पृथक पर पदार्थों से जुड़ी जो आत्मा है उसकी कथा हमें सुनने में कभी नहीं आई है। हमारा सारा संस्कार तो काम भोग बंध कथा, श्रुत भी है सुनी भी है हमने अपने जीवन में अनुभव, परिचित भी श्रुत परिचिदान भूता वही हमने सुनी है, उसी का हमारा परिचय है और उसी का हमारा अनुभव है। संसार की जितनी भी दुख के कारणों की कथाएं हैं जो हमें दुख में ले जाती हैं, हम पढ़ते हैं हम सुनते हैं, लेकिन इसके बाद भी इसके लिए उदाहरण दिया कि ठटे रेखा कबूतर सोने चांदी वाला करता रहता है अपने औजार से बनाते समय, तो जब पहली बार उसकी मुरेर पे कबूतर बैठा तो जैसे उसने ठक किया तो कबूतर फर्म हो गया, फिर आके बैठा तो फिर ठक किया फिर हो गया। दो तीन बार उसने सोचा कि ठक की आवाज आती तो है लेकिन कोई हमारा डिस्टर्ब नहीं करता, कोई माठा वाला तो हम जबरदस्ती उड़ जाते, तो उसने जब ठक ठक की आवाज आती तो वो बैठा रहता आराम से, बस वो एडिक्ट हो गया, वो अभ्यस्त हो गया कि ठक ठक की आवाज आती रहती है, अपने कोई फर्क नहीं पड़ता। हम भी जो है अभ्यस्त हो गए हैं इन सारी चीज़ों को सुनने के, कोई दुख के कारण बता दो तो हम कहते हैं ठीक है उतरेंगे उसी में, हम बता दो आप कोई दिक्कत जाना हम उसी में, अपना नाम नहीं होती है, आप लाख बताओ उपाय हम भी जानते हैं, हम शायद जो कोई हमसे दूसरा पूछेगा तो हम उसको और अच्छे से डिफाइन कर देंगे कि दुख के कारण ये। कोई भी आप देख लीजिएगा कि हर व्यक्ति दूसरे को बहुत अच्छे ढंग से दुख से बचने का उपाय बता सकता है, लेकिन जब उसके ऊपर कोई दुख आता है तब वो दूसरे के पास जाकर पूछता है कि क्या उपाय है, कैसे बचूं मेरे ऊपर दुख, या फिर बात एक डॉक्टर अपना इलाज खुद नहीं कर सकता, दूसरे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, लेकिन वो डॉक्टर ये हमारे संस्कार की वजह से ये हमको हैबिट पड़ गई है। उससे बचिए तीन बातें बोलेंगे, हम डिनाइल ऑफ रियलिटी हम वास्तविकता से पलायन करते हैं, हमारे अपने संस्कार हमें प्रेरित करते हैं, और हम अपना पुरुषार्थ नहीं कर पाने से उन संस्कारों के द्वारा प्रेरित होकर फिर उन्हीं सारी चीज़ों को करने लगते हैं जिनसे कि हम क्रिया मेरे ख्याल से ये उसका। अब ये चौथा वाला प्रश्न
मुझे बहुत महत्वपूर्ण है
बच्चों ने कामना करी है कि गर्भों में फिर से शीतकालीन वासना के लिए आए। कल किसी ने एक तो हमारे लिए कविता लिख कर दी थी तो वो हमने नहीं पढ़ी थी, उनका कहना है कि आपको वो अच्छी नहीं लगी इसलिए नहीं सुनाई, नहीं ऐसा नहीं है, वो मैं सुना नहीं पाता इसलिए नहीं सुनाई, और ना मैं वो आपके मुँह से सुन सकता ना बाकी लोग भी सुन सकते, क्योंकि सबका मन भर जाता तो जब मन हार जाता तो फिर शब्द थोड़ी होते हैं, शब्द तो मन समझाने के लिए है, मन को भरने के लिए है, रिक्तता को भरने के लिए है शब्द। और जब मन अपने आप ही भर जाए तो फिर शब्द की जरूरत नहीं है, दो लोगों के बीच में शब्दों की तब तक जरूरत रहती जब तक कि मन नहीं भरा और भर जाए तो फिर तो मन भरने से मतलब ये नहीं सोचना कि अब हम तो जैसे मन भर हो जा रही है, तो मन भरने का अर्थ ये सोचते मन भरना का अर्थ है कि आप समझते हैं उस चीज़ को कि क्या करूँ। इसमें भी इन्होंने यही लिखा है
पूरा पढ़ गया मराठी
शांति से पढ़ता तो इसको आपका झांसी प्रवास सत्व जीवन में सभी सदैव याद रहेगा। व्यक्ति के मन वचन विचार भावनाएं मानसिकता बहुत अच्छी है, ईश्वर में उसकी आस्था है, थोड़ा सामायिक स्वाध्याय भी करती है, किसी से द्वेष कषाय भावना भी नहीं है, और यदि होगी भी तो बहुत मंद है, लेकिन फिर भी वो अंधे में विराजमान मूर्ति में विश्वास न करता तो क्या उसको सारी अच्छाइयाँ उस एक बुराई के सामने निरर्थक है। आपके प्रवचन से इसमें एक चीज है, ये प्रश्न मेरे पास आगरा में भी आता, उनका प्रश्न ये था कि हम मंदिर नहीं जाते हैं ना हम दर्शन करते हैं, जरूर है कि हम अपने फील्ड में फील्ड में मैदान में हम किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं, न किसी को कोई पीड़ा पहुंचाते हैं, हम सबके काम पूरे कर देते हैं, हम नाराज भी नहीं होते, द्वेष भी नहीं करते हैं। बताइए हम कहाँ हमारी कमी है, हमने उनसे यही कहा था कि अपन अधूरे। एक व्यक्ति जो मंदिर जाता है और मंदिर नहीं अपने धार्मिक अनुष्ठान की युति करके बाहर आकर के फ्रॉड करता है वो भी अधूरा है, और एक व्यक्ति ये कहे कि मैं सारी दुनिया में तो अहिंसा बांटता हूँ लेकिन मैं मंदिर नहीं जाता तो वो भी अधूरा है। क्यों अधूरा है? जिस अहिंसा को बांट रहा है उस अहिंसा के देवता के चरणों में दिन भर में एक बार माथा भी नहीं टेकेंगे क्या? सवाल ये, आप मंद कषायी हैं, आप स्वाध्यायी हैं, आप सामायिक भी करते हैं, सब कुछ आप बहुत अच्छा करते हैं, तो इन सबका उपदेश जिससे मिला है, इन सब में जो मास्टरी करके बैठा हुआ है, जो इन सबका ईश्वर है, उसके चरणों में आपको माथा टेकने जाने में क्या होगा? इसका मतलब है कि आपके अंदर अभी पूरी चीज नहीं है, आधा अधूरा है काम। एक मंदिर जाकर के फील्ड में कुछ ना करे वो भी अधूरा है, और एक बाहर सब कुछ करना है और भगवान के दर्शन न करें वो भी अधूरा है, ये पूछना है। ये बुराई नहीं है, मंदिर नहीं जाने की बुराई नहीं कहूँगा, जो आप कह रहे हैं कि क्या इतनी अच्छाइयों में एक बुराई, ये बुराई नहीं है, आपका आपकी कमी है। बुराई अलग चीज होती, कमी अलग चीज होती, कमी तो पूरी की जा सकती, बुराई को दूर करना पड़ता, उसको तो हटा नहीं पड़ता, नहीं तो इसको फुलफिल करिए, क्या दिक्कत है? आप तो जब इतना सारा कुछ कर रहे हैं, ये तो इंदिरा जी जब शौर बेल गुना में 81 में अभिषेक में गई तो संसद में प्रश्न उठा कि आपने जो है किसी संप्रदाय विशेष को, जबकि धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, किसी संप्रदाय विशेष के दलीलों का निवास आपको जाने की और धैर्य चलाने की और उनके अनुष्ठान में शामिल होने की आवश्यकता क्या थी? ऐसा प्रश्न उनसे सांसद ने किया, वो सुनती नहीं होती उच्चारण, तो उन्होंने एक ही बात कही, बात में खड़े रहते जो मुझे मालूम पड़ा, उन्होंने कहा कि जिस अहिंसा और सत्य से हमारे गांधी जी ने देश को स्वतंत्र किया, आज़ाद किया, अगर मैं उस अहिंसा और शब्द के देवता के चरणों में जो फूल चढ़ा के आ गया तो है ना, ऐसा मैंने राष्ट्र के विरुद्ध क्या किया? मैंने कोई राष्ट्र के विरुद्ध नहीं किया, मैंने वहां पर किसी देवी देवता को नहीं माना है, मैंने तो अहिंसा जो प्राण है हमारे, अहिंसा पर वो धर्म जो कि हर धर्म का प्राण है, कोई भी धर्म के वहां जो धर्म हिंसा करता हो ऐसा वो धर्म ही नहीं हो सकता, सीधा सीधा अहिंसा ही धर्म है। चाहे आप रामचरित मानस खोल के देख लीजिएगा, चाहे आप गीता खोल के देख लीजिएगा, चाहे आप कुरान खोल के देख लीजिए, कुरान खोल के धर्म ही उठा करके देख लीजिए, हिंसा को कहा कि बड़ा मधरा मुश्किल के लिए अहिंसा पर अहिंसा समय नहीं होता, कहीं कोई सब तो भिनाया है, सब दूर। तो आपका फर्ज है कि आप अहिंसा की गुणता के चरणों में भी कभी सीखेगा, एक बार माथा टेक के आइएगा और भावना करिएगा कि हम आपके सहारे अपना भी कल्याण करें, प्राणी जगत प्राणी माता का कल्याण करें, तब आपका पूरा हो जाएगा। मोक्ष मार्ग इतना कठिन है कि आज चलना इतनी कठिन तपस्या, इतना त्याग, इसके बदले मनुष्य कितना गिर जाता है। सही है कि बुंदेलखंड है, जिनका सोचना यही है कि मोक्ष मार्ग बहुत कठिन है, उस पर हमारे साधु जन चलते हैं, कठिन तपस्या करते हैं, त्याग करते हैं, फिर भी लोग जो है उनसे कुछ ले नहीं पाते हैं, बल्कि अपने जीवन को उनके माध्यम से और गिरा लेते हैं। ऐसा उनका सोचना है, ठीक ही है। आप मोक्ष मार्ग पर निष्ठा कर चलें, मतलब इनका यही है कि हम लोग शायद आपको अच्छा प्लेजेंट वातावरण नहीं दे पाए हों, इस तरफ कम ही वातावरण मिलता है एमपी में, गुजरात सागर साइड में फेवरेबल कंडीशन ज़्यादा है, यहाँ पर अनफेवरेबल है। लोग सब कुछ जानते बूझते हैं फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते, इतनी त्याग तपस्या के बावजूद भी वे उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं, बहुत जल्दी बल्कि अपोज करना शुरू करते हैं, ये उनका शायद आता है। पर कोशिश क्या करें, व्यक्ति के कर्म का उदय आ जाता है। मुझे तो यही लगता है कि व्यक्ति सब कुछ करते हुए भी कर्म के उदय में बहुत मजबूत हो जाता है, इसलिए अपने को कर्म बांधते समय सावधानी रखनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि जब वो फल दे तो हम मजबूत हो जाएं। बांधते समय ही हम सावधान रहें ताकि हमें फिर कर्म का फल भोगने के लिए मजबूर ना हो। कैसा लगता है कई बार जब हम अपने ही देवगुरु शास्त्र के अपोज में खड़े होते हैं, कैसा लगता है? हम अपना कितना आहित कर लेते हैं, जहाँ हम त्याग तपस्या करते हैं वहाँ भी हमें झुक पाते हैं, वहाँ भी हमें लगता है गिरवा जैसे जुड़कर हम पाषाण के सामने झुक जाएंगे, लेकिन एक जिंदा आदमी के सामने नहीं झुक सकते, हमारा अहंकार हो। इसको तो तोड़ना है, इससे तो जीतना है। कोशिश करिए अधिकांश व्यक्ति 12-16 घंटे में केवल एक बार छाना पानी पीते हैं, वो पानी के बिना छने पानी की अपेक्षा कम है। असल में झरने में से जीव भले ही निकल जाते हो, लेकिन ये तो भावना का झरना है, वो वाला झरना तो जाड़ा भी हो सकता है, पतला भी हो सकता है, उसमें से हो सकता है बैक्टीरिया नीचे निकल जाए, हम ना बचा पाए, लेकिन ये जो बचाने की भावना वाला छन्ना है ना, वो सब कुछ बचा लेता, हमको बचा लेता, जीवों को बचा पाए ना। मतलब हमारी जो बार बार पानी, मैं जब भी पानी पीऊँ इसमें जीव राशि है, इसको कैसे बचाऊँ, मैं छाने लेता हूँ ताकि जितना बच जाए उससे बच जाए, फिर पीऊँगा, पीना तो है, सांस तो लेनी है, जरा संभल के कि किसी को तकलीफ ना हो, सांस तो लेनी है, पानी तो पीना है, लेकिन किसी को तकलीफ ना पहुँच जाए। मुझे अपने जीवन के एक एक कार्य में दूसरे को कहीं भी कोई आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न होना चाहिए। जो आत्मा के लिए हमें अपने प्रतिकूल लगता है वो हम दूसरे के लिए क्यों करें, इस तरह की भावना होने की वजह से हम पानी छानते हैं, और उसमें छानते हैं तो उसमें हम दोष से बच जाते हैं। आलू अभी मूली गाजर अदरक के सब समान रूप से दोषी है, और जो भी जमीन कर्म है, जमीन के नीचे होने वाली वनस्पति वनस्पतियों में सूर्य के प्रकाश का अभाव होने से बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा ग्रो करता है, जो उनको अगर निकालते हैं तो सबकी क्षति होती है, तो सब मरता है। और फिर किसी जगह लिखा हुआ है कि जो अंधेरा खाता है अंधेरा उगलता है, तो हमारे यहाँ पर जिनको तामसिक भोजन से बचना है, सात्विक भोजन करना है, उनके लिए इस बारे में याम याम कभी गीता का श्लोक पढ़ते करते लिखा हुआ है, याम याम रात्रि के दो रात्रि आने से दो पहर पहले अपना भोजन कर लेना, और रात्रि समाप्त होने के दो पहर बाद अपना भोजन शुरू करना, अन्यथा इस पीरियड में किया गया भोजन तामसिक होगा, भले ही वो रोटी दाल सब्जी जो कि सात्विक भोजन है वो क्यों ना हो। देखिए वही सारी चीजें अगर हम रात्रि के समय पर खाते हैं तो वे सब तामसिक भोजन, वही सारी चीजें जो कि जमीन के अंदर है वो हम अगर खाते हैं तो वो सब तामसिक है। कोई भी तामसिक आहार करेगा तो सात्विकता उसके अंदर नहीं आ पाएगी, इसलिए शायद बचाने की कोशिश करेंगे, निश्चय इसी अपेक्षा से किया। हिंसा अहिंसा का अस्तित्व तो है ही, हमारे अपने आत्मा की आत्मा का पतन होना भी तो हिंसा ही है, हमने अपने जीवन को खुद पतित कर दिया तो हमने अपने को मारा ही तो है, और क्या उसमें लिखा हुआ है कि सबसे बड़ी हिंसा तो ये है अपने प्राणों का घात करना, अपने को अपने को पतित कर देना, अपने को गिरा देना, मनुष्य होने के बाद भी सबको जानते हुए भी अपने को गलत काम में ले जाना, ये अपनी हिंसा है दूसरे की। इसलिए शायद वाली कविता की कह रहे हैं, लेकिन ऐसे सबके बीच में मैं उसको पब्लिक स्पॉट पर तो मुझे बताइएगा कल तो वो कमरे में ऐसी मन बन गया शाम को, लोगों ने कहा बोलते लोग फिर तो मैं शाम को सुना फिर कैसे ही देखा कभी कंप्यूटर नहीं बैठा थोड़ा उसको बचाइएगा मुझे मतलब। ये सारे प्रश्न लगभग उसी आशय के हैं, काफी फील कर रहे हैं लोग, सभी ने यही लिखा हुआ है कि जो किराना वाली कविता के लिए है कल आपने सुनाई थी, यदि संभव हो आज फिर सुना दीजिएगा। संभव तो है लेकिन यहाँ संभव नहीं लग रहा है, कोई सुनाने में कोई दिक्कत नहीं है, ये भी किराना वाली कविता के लिए
सुनिए
इस जगह पर
फरमाए बहुत है
महाराज जी क्या बात कर रहे हैं।
थोड़ा सा सोच नहीं पा रहा हूँ अभी, थोड़ा सा संकोच लग रहा है,
मन बना लीजिए।
नहीं मन तो मेरा बना हुआ, लेकिन
पुराना सुना देना
मैं उसको गाऊं कि थोड़ा सा मेरे पद के अनुरूप मुझे
नहीं
आप ठीक है
ठीक ठीक
कल हम आपके साथ 20 किलोमीटर गए और थकावट की भी कोई शिकायत नहीं हुई, वापस आए अभी लंबा लगा रहने जाएगा पर जाते समय बिल्कुल लंबा नहीं लगा, आशीर्वाद दीजिएगा कि हम इसी तरह अच्छे राम में आगे बढ़ते रहें, शक्ति बढ़े अच्छी बात। हम जल्दी घबरा जाते हैं, घबराने की वजह जल्दबाजी करते हैं, हमारी जल्दबाजी से कोई परेशानी होती है, उनकी जल्दबाजी से परेशान होते हैं, समझ में नहीं आता क्या करें, समाधान कैसे कौन करना सीखिए। सबसे अच्छा ये कि एक अपना साथी बना लें, जब भी आपको कोई निर्णय लेना तो एक तो हम थोड़ी देर बाद जाएंगे, एक अपने मन में ही अपन ऐसा कोई अनकॉन्शियस में डिपॉजिट कर लें विचार, एक सलाह है अपने को ये ऑटो सजेशन कहना था, उसके वो कर सकते हैं आप शांत बैठ जाइए ऑटो सजेशन लीजिएगा, ऐसी कंडीशन है अब जबकि कोई मेरे ऊपर निर्णय आएगा मैं जल्दी नहीं करूँ, एक्शन और थाट दोनों में मैं थोड़ा सा पोस्टपोन कर दूँ, कोई भी काम करना हो तो दो मिनट बाद करने का मन हुआ खैर दो मिनट बाद सोचा कुछ सोचा और तुरंत उसको फॉलो करने के लिए कहते हैं थोड़ा खैर फिर है। या कि एक व्यक्ति खोज लीजिए अपने आसपास जिससे आप बिना सलाह लिए जिससे आप बिना पूछे करना अपने मन की है ये ठीक है, लेकिन उसके कान में डाले बिना नहीं करें, जरा उससे भी बात करने की मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा ऐसा कर लूँ तो उसकी सलाह भले आप ना माने पर उससे पूछ कर उसके बाद उसके काम पर बात करें, ताकि जब आप गलत हो जाएंगे तो उनके पास जाके कहने के लिए कि मैंने आपसे कहा था और आपने इतनी सारी सलाह भी दी थी फिर मैंने जल्दी में ये काम कर दिया अब मैं आगे से फिर से ऐसा नहीं कर रहा, वो आपको सपोर्ट करें इस तरह कर सकते हैं दोनों उपाय हैं, आपको सजेशन दे करके और पोस्टपोनमेंट करिएगा उसका, या कि किसी व्यक्ति को मदद के लिए ले लीजिएगा बहुत आसान हो जाएगा। कल अचानक गमन का सोच करके हम घर से वापस आए, भागे वगैरह दर्शन भी किए लेकिन इतनी जल्दी गमन हो जाएगा विश्वास नहीं हुआ, अरे वाह मैं तो एक महीने से कह रहा था गमन ने कह रहा था कि आप बाद में हड़बड़ाइएगा मत, क्योंकि किसी के दिन फिर भी काफ़ी समय रुकना हुआ ये मानिएगा, गमन ने 23 अक्टूबर को रिकवरी करनी थी और मैं आज 17-18 अक्टूबर है एक महीने दीपावली के बाद भी हो गया है ऐसा नहीं, क्योंकि दीपावली का सही चतुर्मास रहता उसके 2-4-5 दिन बाद जाएगा। एक सवाल ये है कि आप लाभ दे दीजिए तो वो हमारे पुण्य का उदय है, वरना तो चीज़ें आसपास हमारे बनी रहें हम उनका लाभ ना लें तो हमें पाप ही का उदय है, दूर हो चाहे पास हम दूर भी होंगे तब भी अगर आप लाभ उठाएंगे तो मानिए आप पुण्य का अर्जन करें, दूरी मायने नहीं रखती है हमारा अपना झुकना और नहीं झुकना मायने, ऐसा करके लोगों को बहुत मुश्किल होगी पुण्य और पाप तो एक जगह से जहाँ से मैं जाऊँगा वहाँ के पाप को उदय आ जाएगा, बड़ा उन्होंने मेरे से कह दिया मैं जाता हूँ। उन्होंने व्रत किया है तो उसमें थोड़ा सा उनको वो है अकाल मृत्यु कैसी है, वो तीर्थंकर 24 ही क्यों होते हैं, तो तीर्थंकर 24 ही क्यों होते हैं, अगर 25 होते तो भी आपके लिए 25 ही क्यों होते, 23 होते तब भी आपके लिए। तो एक नियम होता है कि इतनी ही आत्माएं इतनी ऊंचाई को पा पाए, हजारों में से लाखों करोड़ों में से एक बार में एक टाइम पीरियड में फिक्स 24 लोग ही इतनी ऊंचाई को पहुंच पाए, ऐसा एक नियम है। और 24 तो सिर्फ भारत क्षेत्र के लिए हैं, एक अरब क्षेत्र और भारत क्षेत्र जैसा वहाँ भी 24 हो सकते हैं, और इतने ही नहीं पूरे ढाई दीप में ऐसे पांच भारत तो पांच अरब हैं वहाँ पर 24 हो सकते हैं, और इतने ही नहीं 32 भूमियाँ विदेश क्षेत्र में हैं वहाँ भी तीर्थंकर 32 हो सकते हैं, और पूरे पांच विदेश में 160 तीर्थंकर हो सकते हैं। तो ये तो भारत क्षेत्र के लिए नियम है कि 24 क्यों होते हैं, इसका एक बच्चों का बड़ा आपको देखेगा तो नहीं फिर भी मैं कोशिश करूंगा समझाने की। ऐसा लिखिएगा ऐसा करके वन एक एक के बाद फिर अपन पा को देखें, अगर गौर से ऐसा पा तो पा में थोड़ा सा ऐसा घुंडी लगा दो अगर तो क्या होगा, पाई पांच हो जाए पांच ये हो गए ना, बिल्कुल लगेगा दो
ठीक
वर्ड्स बनाए पर इसके रा यानी दो, फिर माँ माँ तो ऐसे चार लिखा जाता और दो गड्डी फिर थी तो साढ़े चार हो गया, तो माँ साढ़े चार हो गया, अट्ठे आठ ऐसे लिखे जाते हैं जैसे आधा बनता है वैसे ही अट्ठे आठ बनते हैं, तो वो आठ हो गया और फिर नीचे माँ है तो साढ़े चार साढ़े चार साढ़े चार नौ आठ सत्रह दो उन्नीस सौ पाँच चौबीस, वो परमात्मा शब्द खुद ही कह रहे हैं कि चौबीस ही पानी क्यों बनता है क्या करें अब आप क्यों बनता है तो ये नहीं पूछ सकते आप, हर एक जगह उसको क्यों नहीं लगा सकते। अकाल मृत्यु क्या चीज है, अकाल मृत्यु यही है कि जितनी आयु हम लेकर के आते हैं वो आयु के निषेक धीरे धीरे करके फिरते हैं और वो अपना समय पूरा होने पर पूरे समाप्त हो जाते हैं, अगर ये शरीर डैमेज हो जाए तो वो आयु के निषेक समय पर ना खेल करके समय से पहले समाप्त हो जाते हैं, उसको अनाकाल मरण कहते हैं। चले जा रहे थे रास्ते से, 40 वर्ष का व्यक्ति था, चले जा रहा था रास्ते से और अचानक जो है टक्कर लगी और नीचे गिरा, जरा सी टक्कर लगी तो नीचे गिरा और वहीं पर हार्ट फेल हो गया, मर गया। अब पहले नंबर पर क्या कहेंगे बताइए, अभी तो 40 ही साल की उम्र थी, अभी थोड़ी मरना था तो अकाल मरण। फिर अपने मन को समझाने की बात कहेंगे, अरे देख भैया इतनी आयु होगी किसी दिन उससे बनना होगा, संतोष धारण करो आकुल बनो, दोनों बातें अगर अपन देखें तो अकाल में मरण हुआ है यानी आयु के निश्चित अपन नहीं जानते हैं कि कितने के, हो सकता 40 के हो सकता 60 साल के हो, और वो 40 साल में जैसे मेट्रोमैक्स उदाहरण देता हूँ बहुत सीधा, मेट्रोमैक्स पे अपन ने पाए जाओ एक घंटे जलने लायक है लेकिन बर्नर ठीक ठीक काम करे तब एक घंटे जाए, वो बर्नर में लीकेज हो गई तो 50 मिनट में जल के नष्ट हो जाएगा, और अगर ब्लास्ट हो गया पेट्रोमैक्स तो क्या होगा 5 मिनट में सारा तेल जल करके नष्ट हो जाएगा, ये पेट्रोमैक्स है। इसके माध्यम से कर्म अपना फल देते हैं आयु, और धीरे धीरे हम अपने आयु को पूरी कर देते हैं समय के अनुसार, लेकिन ये नष्ट हो जाए इसमें कोई टूट फूट हो जाए आर्टरी में ब्लॉकेज हो गई तो कैसे काम चलेगा, तो पूरे निषेक आकर के एक साथ जो है नष्ट हो जाते हैं, जीव अपनी नई जीवन की आयु बांध करके दूसरी जगह ट्रांसमाइग्रेशन कर देता है, उसी को पुनर्जन्म कहते हैं, अपनी दूसरी आयु बांध है।
क्या ऐसा मान सकते हैं कि जो मरण किसी निमित्त से हो वो
और क्लियर कर लें इसको, अकाल मरण और सकाल मरण की परिभाषा, जब भी किसी बाह्य निमित्त के द्वारा जो मरण होता है उसे अकाल मरण कहते हैं, और आराम शांति सहज भाव से हो जाता है उसका मरण अकाल मरण। कृपया जवाब दीजिएगा, जब कलाम कर्मा जी छोड़ा तब इतनी तकलीफ हुई कि पिता का हाथ से जाने का दिख, रात में भी कर्मा वाले बाप सपने में देखे बोले कि जा, और ओरछा में पूछ कर क्या कि बोल कर गए थे कि शायद इतना चल नहीं पाऊंगा, ठीक से पहुंचा दिया क्यों, बस इसी किसी वजह से आपके पास आया हूँ कि आपका विश्वास कम हो, आपका कर्मा अतिशय श्रेष्ठ है, बस इतना ही मुझे कहना है, और उसका लाभ लेते रहिएगा। मैं तो पहुँच जाऊँगा जहाँ मुझे पहुँचना है, आशीर्वाद है मेरे साथ। आप भी जो है और मोक्ष मार्ग पर किसी के सहाय निरंतर चलते रहिएगा, सहाय बहुत आवश्यक। हम सब लोग तीर्थंकर की हैसियत के लोग नहीं है कि बिना किसी सहाय सबको एक दूसरे का सहारा चाहिए, और भगवान का सहारा तो चाहिए ही चाहिए। एक फॉरन की बुक में मैंने पढ़ा लाइफ आफ्टर डेथ नाइट, क्या सोचते होंगे लोग, सोचते हैं फॉरन में क्या सोचते होंगे, तो वहाँ भी उन्होंने लिखा कि जब मेरे से वो ईश्वर के बारे में तर्क दे रहा था, कह रहा था कि ईश्वर नहीं होता, तो मेरे पास कोई तर्क नहीं थे, मैं तो सिर्फ बहुत कमजोर हूँ इसलिए मुझे ईश्वर की जरूरत है, और मैं उससे क्या कहूँ कि ईश्वर है या नहीं, मैं तो बहुत कमजोर हूँ कि ईश्वर की जरूरत है, अब ईश्वर है या नहीं है इससे मुझे कोई मतलब नहीं। आप चाहे ईश्वर को तर्क दे के नकार दीजिएगा, लेकिन मेरे लिए तो सहारा चाहिए, इसलिए मेरे लिए तो ईश्वर है। में चार दिन रुकने के लिए निवेदन कर रहे हैं, चार महीने आप झांसी रुके हैं तो कम से कम चार दिन
डिमांड तो जाए नहीं।
यही लोग जब झांसी आते तो ये कहते कि हमारे ओर से चलो, तो उनसे मालूम क्या कहते, बजाओ दुनिया के प्रति अनुराग भले ही अभी कम नहीं हुआ है, ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, दुनिया के प्रति अनुराग है, लेकिन उसके साथ साथ कभी कभी मन करता है कि दुनियादारी से जो बच गए हैं उनके प्रति भी हम जुड़े हैं, तो ये अच्छा ही है, शुभ लक्ष्य है, हिंदी महीने से, और ये अंग्रेजी तारीखों के हिसाब से 22 नवंबर को आचार्य दिवस पड़ता है, और वैसे माघ मकसिर कृष्णा दोष, तो अगर उस हिसाब से अब मकसिर कृष्णा दोष जो है उस समय जब 72 में वो 22 नवंबर को पड़ी होगी, 12 नवंबर को पड़ गई, पिछले साल जो है जो विदिशा में था उस समय 12 नवंबर को, इसलिए तो डेट तो बदलती है, अपन हिंदी महीने से मनाते हैं। कुछ लोगों की वो जो है रही है शिकायत कि कोरोना वाली कैप्टन में प्रॉमिस तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं सुनाऊँगा जिसकी भी आकांक्षा उसको सुनने मिल जाएगी, अभी नहीं मिलेगी, थोड़ा एक आध दोस्त थोड़ा और कोशिश
कर
सब जीवों से नित्य रहे
करूं।